शामली अचानक जैसे होश में आई। उसने हड़बड़ाकर आर्यन की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और आंखों में बेचैनी थी। शामली कांपती आवाज में, आर्यन प्लीज मुझे छोड़ दो, ये सब गलत है। जिस रिश्ते की वजह से मैं इस घर में हूं, उसी का गला घोंट रहे हो तुम। उसकी आंखों में डर था, घबराहट थी और कहीं गहरी छुपी बेबसी भी। उसने आर्यन की पकड़ ढीली करने की पूरी कोशिश की, मगर आर्यन ने उसे और कसकर थाम लिया। आर्यन का चेहरा बिल्कुल पास था, उसकी नज़रें सीधे शामली की आंखों में उतर रही थीं। गलत वो है शामली जो तुम्हारे हिस्से में आया, वो रिश्ता जिसमें सिर्फ ताने हैं, सिर्फ उपेक्षा है। मैं तो बस वही दे रहा हूं जो तुम्हें मिलना चाहिए, प्यार। उसने एक हाथ से उसके बालों की लटों को धीरे धीरे कानों के पीछे सरकाया। उंगलियों का हल्का स्पर्श शामली को और बेचैन कर गया। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आर्यन ने उसके गाल को उंगलियों से सहलाया, उसका चेहरा अपने करीब खींचते हुए फुसफुसाया। तो क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हारी आंखों में जो ख्वाहिश है उसे ऐसे ही अनदेखा कर दूं? शामली ने झटके से सिर हिलाया, आंखें भीग चुकी थीं। रूंधे स्वर में, हाँ छोड़ दो मुझे, क्योंकि अगर तुम ऐसे पास आते रहे तो ये मेरी मौत बन जाएगी, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए, मैं टूट जाऊंगी। उसके शब्द कांप रहे थे, लेकिन उसके कांपते होंठ और थरथराते हाथ उसकी सच्चाई बयान कर रहे थे। आर्यन की आंखें भर आईं, उसने अचानक शामली को कसकर सीने से लगा लिया, उसके गाल पर आंसू टपक पड़े। भर्राई स्वर ने, तुम मर जाने दो शामली, अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मैं जीकर भी क्या करूंगा, तुम्हें खोना मेरे लिए मौत से भी बदतर है। उसने उसके कानों के पास अपने गर्म सांस छोड़ते हुए धीमे से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम भी करती हो, सब जानता हूं मैं। तुम्हारी आंखें छुपा सकती हैं मगर दिल नहीं। शामली का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी उंगलियां अनजाने में आर्यन की कमीज को पकड़ चुकी थीं, वो चाहकर भी खुद को पूरी तरह अलग नहीं कर पा रही थी। आर्यन ने उसके बालों में हाथ फिराया, कभी लटों को माथे से हटाया, कभी उंगलियों से उसकी गर्दन को छू गया, हर स्पर्श में बेचैनी और खिंचाव था। उसकी दूसरी हथेली शामली के गाल पर टिकी रही, वो उसके चेहरे को ऐसे सहला रहा था मानो उसे कभी खोने से डरता हो। शामली की आंखें बंद हो गईं, उसके गाल गर्म थे और होंठ कांप रहे थे। आर्यन, तुम क्यों नहीं समझते, ये रास्ता हमें कहीं नहीं ले जाएगा, तुम्हारा ये प्यार मेरी बर्बादी है। आर्यन ने उसके चेहरे को दोनों हथेलियों में थामकर अपनी नजरों में कैद कर लिया। बर्बादी अगर तुम्हारे साथ है तो मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारे बिना जीना कभी मंजूर नहीं होगा। उसकी आंखों से आंसू फिर ढलक पड़े, उसने शामली को कसकर अपनी छाती से चिपका लिया, उसकी गर्म सांसें शामली के कानों के पास टकरा रही थी। फुसफुसाकर, अगर तुमने मुझे अपना नहीं बनाया तो मैं मर जाऊंगा शामली, तुम मेरी जिंदगी हो, तुमसे दूर रहकर मैं सांस भी नहीं ले सकता। शामली की उंगलियां अब आर्यन की पीठ पर टिक चुकी थी, वो रो रही थी, लेकिन उसके आंसू विरोध के नहीं, डर और चाह के मिले जुले थे। उसका पल्लू बार बार हाथों से कसने की कोशिश करती, मगर हर बार ढीला पड़ जाता। आर्यन कभी उसके गालों को सहलाता, कभी बालों में हाथ फेरता, कभी उसकी ठुड्डी उठाकर आंखों में झांकता। उसकी हर हरकत में मोहब्बत थी, लेकिन उस मोहब्बत में एक पागलपन भी था। कमरा अब सिर्फ उनकी धड़कनों और सांसों से भर गया था। बाहर हवेली की खामोशी और चांदनी जैसे गवाह बन खड़े थे, दो दिलों की उस जंग के जिसमें चाहत और मर्यादा दोनों ही हारते नजर आ रहे थे। शामली ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, आंसुओं से भीगे चेहरे और धड़कनों की बेकाबू आवाज के बीच उसने आर्यन को हल्के धक्के से पीछे किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में कठोरता लाने की कोशिश थी। बस आर्यन, अब और नहीं, तुम्हें खुद को समझाना होगा, जो चाहत हमारे बीच है वो कभी सच नहीं हो सकती, हम नहीं मिल सकते, समझो ये। आर्यन का चेहरा तड़प से भर गया, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर होंठों पर अब भी एक अजीब सी मुस्कान थी। धीमे स्वर में, तुम्हारे लिए सब छोड़ सकता हूं पर तुम्हें नहीं। शामली ने जोर से सिर हिलाया, उसकी आवाज तेज हो गई। जाओ आर्यन, प्लीज जाने दो मुझे, वरना ये दिल भी मुझे माफ नहीं करेगा। कुछ पल तक आर्यन चुपचाप उसे देखता रहा, उसकी सांसें भारी थीं, आंखें लाल थीं, फिर उसने गहरी सांस ली, उसका गाल छूकर फुसफुसाया। तुम्हारे बिना जीना सजा है शामली, लेकिन अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो ठीक है, मैं इस वक्त जा रहा हूं, पर याद रखना तुम्हारी धड़कनें मेरे नाम ही रहेंगी। ये कहकर वो धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा। शामली का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था, उसने आंखें कसकर बंद कर ली, खुद को संभालने की कोशिश की। आर्यन दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अचानक भारी कदमों की आहट गूंजी, कमरा जैसे थम गया। दरवाजा खुला और भीतर आए विश्वनाथ। सफेद शर्ट, काली पैंट, कमीज की आस्तीनें थोड़ी मुड़ी हुई और चेहरे पर वही जनजात कॉन्फिडेंट रूडनेस। उसकी आंखों में ठंडापन और चाल में एक रफ अंदाज था। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसकी नजर सबसे पहले आर्यन पर पड़ी। पल भर में उसकी निगाहें फिर शामली पर टिकी। वो नजर भारी थी, जांचने वाली, भेदने वाली। आर्यन ने तुरंत संभलते हुए नजरें नीची कर ली, मगर उसका जबड़ा कसा हुआ था। विश्वनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस अपने अंदाज में कमरे का जायजा लिया और सीधे अलमारी की ओर बढ़ गया। उसकी चाल में ऐसा दबाव था मानो पूरे कमरे की हवा उसके कदमों के साथ बदल रही हो। श्यामली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो हड़बड़ाकर पल्लू संभालने लगी, होंठ कांपने लगे। उसके हाथ अब भी हल्के से कांप रहे थे। विश्वनाथ ने अलमारी खोली, कुछ फाइलें निकाली और बड़े इत्मीनान से पलटने लगा। उसकी आंखें पन्नों पर थीं, मगर कमरे का बोझ बता रहा था कि वो सब महसूस कर रहा है। वो जाकर सोफा कुर्सी पर बैठ गया, पैर मोड़कर एक हाथ आर्मरेस्ट पर रखकर और हल्का झुककर उसने फाइल पढ़नी शुरू कर दी। चेहरा अब भी उतना ही सख्त और रफ था। कमरा अब सिर्फ उनकी धड़कनों और सांसों से भर गया था। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। वो जानता था कुछ देर और ठहरा तो हालात बिगड़ जाएंगे। उसने बिना कुछ बोले बाहर निकलने के कदम बढ़ाए। जाते जाते उसकी नजर श्यामली पर पड़ी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मगर होंठ खामोश थे। दोनों के बीच एक अनकहा संवाद गुजरा। मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूं और तुम मुझे ठुकरा रही हो। आर्यन बाहर निकल गया। अब कमरे में सिर्फ विश्वनाथ और श्यामली थे। विश्वनाथ ने एक पन्ना पलटा और अचानक बिना ऊपर देखे ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें डर क्यों लग रहा है श्यामली? कोई चोरी की है क्या? श्यामली का गला सूख गया। उसके होंठ कांपे, मगर आवाज नहीं निकली। उसने सिर झुका लिया, हाथों से पल्लू कसकर सीने पर टिका लिया।